हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगले दिन शाम का वक्त था। करण अपने ऑफिस केबिन से बाहर निकलकर ऑफिस से बाहर एग्जिट डोर की तरफ जाता हुआ बोला, नहीं मीरा, तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती है? मुझे तो कभी कभी लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाकर। अपने हाथ में मोबाइल, आईपैड और अपना पर्स पकड़े हुए मीरा लगभग भागते हुए करण के पीछे आती हुई बोली, हाँ ठीक है, पता है मुझे, रोज ही सुनती हूँ, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब तुम्हें इस बात को लेकर पछतावा ना हुआ हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे इस पोस्ट से हटा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें भी पता है और कोई तुम्हें झेल नहीं सकता, वो खुद ही भाग जाएगा। ये बात बोलते हुए मीरा थोड़ी तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए उसकी तरफ आई और दरवाजे से बाहर निकलते हुए वो एकदम लड़खड़ा गई और गिरने वाली थी कि तभी करण पीछे मुड़ा और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या गिरती रहती हो हमेशा, और तुम मेरी असिस्टेंट हो या फिर मैं तुम्हारा जो मैं तुम्हें संभालता फिरूं? करण ने उसे संभाल तो लिया, लेकिन उसे गिरने से बचाते हुए करण उसका हाथ पकड़कर बोला। मीरा एकदम सीधे होकर खड़ी होती हुई बोली, थैंक्स एंड सॉरी, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती, बट तुम मेरी बात सुन लो, पहले मैं जो बोल रही हूँ, इस तरह से भागो मत, नहीं तो मुझे भी तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा और मैं फिर से गिर गई तो? करण ने उसका हाथ छोड़ दिया और तेजी से अपना सिर हिलाते हुए वो वहां से आगे बढ़ गया। उसे मीरा की बात में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मीरा को देखकर लग रहा था जैसे कि वो कोई बहुत जरूरी बात या इन्फॉर्मेशन करण को बता रही है। करण अब तक लिफ्ट के पास आ गया था और उसने बटन भी प्रेस कर दिया था। कुछ ही सेकंड के बाद लिफ्ट ओपन हुई और करण लिफ्ट के अंदर आ गया। मीरा भी तब तक भागती हुई वहां पर आ गई। लिफ्ट बंद होने से पहले अपना पैर लगाकर उसने दरवाजा रोका और फिर वो भी करण के साथ ही लिफ्ट के अंदर जाकर खड़ी हो गई और बोली, सारी सिचुएशन से अगर ऐसे भागते रहोगे तो फिर यही साबित होगा कि तुम ही गलत हो इन सब में, इसीलिए तुम्हें ये अवार्ड शो जरूर अटेंड करना चाहिए। करण, गलत समझे या सही, मैं किसी को कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं बैठा हूँ और मुझे नहीं जाना है ऐसे किसी भी अवार्ड शो में। मैंने एक बार मना कर दिया ना, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे तो मेरी बात तो सुन लो, ऑर्गेनाइजर ने इस पर इसीलिए हमारी कंपनी को फ़ोन करके बोला है कि इस साल की बेस्ट डिज़ाइनिंग कंपनी का अवार्ड हमारी कंपनी को ही मिल रहा है, तो ऐसे में कंपनी से किसी का जाना ज़रूरी है और उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि तुम ही वहाँ पर आओ। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, तुम टाइम शेड्यूल और वेन्यू का एड्रेस सब कुछ मैसेज कर देना, अगर मेरा मन हुआ तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन अकेले। लिफ्ट खुलते ही करण लिफ्ट से बाहर निकलते हुए ये बात बोला और फिर तेज कदमों से वो सीधा अपनी कार की तरफ खड़ा हो गया। मीरा वहाँ पर लिफ्ट में ही रुकी रह गई और करण को वहाँ से आगे जाते हुए देख रही थी। कुछ देर के बाद वो लिफ्ट का दरवाज़ा वापस से बंद हो गया और मीरा वहाँ पर अंदर ही थी। दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा और डिज़ाइनर बना हुआ एकदम नया म्यूज़िक स्टूडियो था। सर, वो लोग, सर मैंने उनके साथ बात कर ली है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है और वो लोग आपकी टाइमिंग के हिसाब से रेडी हैं, अगर आपको रात में शूट करना है तो उसके लिए भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फेमस क्लॉथ ब्रांड है जिनकी डिमांड भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है और आपका नाम के साथ ऐड हो जाएगा तो दोनों का ही बेनिफिट है। एक लगभग 19-20 साल की लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होकर ऋषभ के सामने आकर बैठती हुई ये बात बोली, जबकि ऋषभ मूविंग चेयर पर बैठा हुआ अपने सामने खोलकर रखे हुए लैपटॉप की स्क्रीन में कुछ कर रहा था। उसके सामने ही म्यूज़िक और वॉल्यूम कंट्रोल वाला बटन भी था। वो शायद इस वक्त वही म्यूज़िक सुन रहा था क्योंकि उसके कान में हेडफोन भी लगे हुए थे, जिससे कि उसे उस लड़की की बातें बहुत ही कम सुनाई दे रही थीं, एकदम ना के बराबर। लेकिन फिर भी वो लड़की बोलती जा रही थी, सर आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? उस लड़की ने शक भरी निगाहों से ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा। ऋषभ ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, उसे सामने बैठी हुई लड़की की बातें जरा भी सुनाई नहीं दे रही थीं और उसे बस इतना समझ में आ रहा था कि वो कुछ तो बोल रही है जो कि शायद उसे सुनना भी इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा था। उसके लिए उसका म्यूज़िक सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए म्यूज़िक के आगे वो किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देता था और अभी उस लड़की की बात पर भी वो ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन वो लड़की दोबारा से उसके सामने आकर खड़ी होती हुई बोली, सर प्लीज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूही, तुम मुझे कंपनी और ब्रांड की डिटेल्स मेल करो, उसके बाद मैं चेक करता हूँ, अगर सच में मुझे ठीक लगा तो मैं ये करूँगा, नहीं तो तुम में से कोई भी दोबारा नाम नहीं लेगा इसका मेरे सामने, समझ गई? ऋषभ ने बस इतना कहा और रूही ने उसकी बात सुनकर धीरे से ऊपर नीचे अपना सिर हिलाया और फिर वो वहाँ से चली गई, क्योंकि ऋषभ दोबारा से ही वापस अपने काम में लग गया। ऐसे में अगर वो वहाँ पर रुकी भी रहती तो बस उसकी डांट खाती या फिर बातें सुनती। रात का वक्त था, करण अपने घर से अकेला ही वहाँ पर उस अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए निकला। उसका मन तो नहीं था क्योंकि उसे पता था वो अगर वहाँ पर जाएगा तो उसे किस तरह के लोगों और उनकी नज़रों सवालों का सामना करना पड़ेगा और फिर मीडिया रिपोर्टर जो उसके पीछे लग जाएंगे वो अलग से। करण इन सारी बातों से डरता या घबराता नहीं था क्योंकि पिछले एक साल में वो काफ़ी बार इन सारी चीज़ों का सामना कर चुका था और उसने काफ़ी अच्छे से ये सब कुछ हैंडल भी किया था और अब तक तो हैंडल करना सीख भी गया था। लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता था कि इस अवार्ड पर उसका हक है, लेकिन फिर भी कंपनी के लिए वो वहाँ पर जा रहा था जिससे कि कंपनी
की रेप्यूटेशन पर कोई असर ना पड़े। कुछ देर के बाद एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम जहां पर वो अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज था, क्योंकि वहां पर बहुत ही बड़े बड़े जाने माने सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन और भी बहुत सारे गेस्ट आए थे। वहां पर कुल मिलाकर 1-2 हज़ार लोगों की भीड़ होगी और उनमें से ज्यादातर को अलग से VIP सीट बैठने के लिए दी गई थी। करण और उसके साथ किसी के आने के लिए भी 2-3 सीट बुक थी, लेकिन करण अभी अकेला ही वहां पर आया था तो वो उस टेबल पर अकेले जाकर बैठ गया। वो एकदम चुपचाप शांति से वहां से अंदर आया, जैसे कि किसी की भी नज़र उस पर ना पड़े। वो नहीं चाहता था कि वो लोगों या कैमरे की नज़र में आए, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पर आकर बैठा, उनमें से जो मीडिया रिपोर्टर सारी जगह नज़र बनाकर रखे हुए थे, उन्होंने करण को भी नोटिस कर लिया और तुरंत ही वहां पर आ गए और उसकी फोटोज क्लिक करने लगे। करण के सामने खड़े फोटोज क्लिक करते हुए उन मीडिया रिपोर्टर्स में से एक ने सवाल किया, करण सर कैसा लग रहा है आपको, आपकी कंपनी को आज बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी का अवार्ड मिलने वाला है। दूसरे रिपोर्टर ने थोड़ा सा रूढ़ होते हुए पूछा, हाँ और ये कंपनी आपकी है भी नहीं है, फिर भी अब सब कुछ आपके नाम पर है, तो कैसा लग रहा है आपको। करण उन लोगों की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वो दूसरी तरफ देखते हुए उनके सवालों को इग्नोर कर रहा था और साथ ही फोटोज भी क्लिक नहीं करने दे रहा था। वो बार बार अपने चेहरे के आगे हाथ लगा रहा था और उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो अपने साथ किसी को लेकर क्यों नहीं आया। कम से कम बॉडीगार्ड्स को ही लेकर आता तो वो लोग इन्हें रोकने में हेल्प कर सकते थे।
सर बोलिए, हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं, कुछ तो बोलिए, मीडिया रिपोर्टर्स ने दोबारा से पूछा। तो करण ने एक नज़र उनकी तरफ देखते हुए कहा, अभी अवार्ड शो के बाद मिलते हैं आपके सवालों के जवाब के साथ। इस बात के लिए मना कर दिया, लेकिन वो मीडिया रिपोर्टर अभी भी पूरी तरह वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। और तभी उन्हें अपने पीछे से आई हुई एक आवाज़ सुनाई दी, कोई जवाब होगा तब देंगे ना मिस्टर करण मल्होत्रा। वो आवाज़ सुनते ही सारे मीडिया रिपोर्टर के साथ करण की अटेंशन भी उस तरफ ही हो गई और सबने पीछे मुड़कर उसी तरफ देखा, तो वहां पर उन्हें अपनी तरफ आते हुए 2 लोग नजर आए। और करण ज्यादा सरप्राइज नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद उसे पता था कि उसके साथ ही वो लोग भी वहां पर आने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड।